पत्नी ने रसोई से आवाज दी, अरे तुमने रखी होगी टोपी, देखो ना कभी तो तुम सिरहाने रख देते हो। अरे सब देख लिया, तकिया उठा के देख लिया, वह देख लिया, ऐसा देख लिया, सभी तो देख लिया, कहीं टोपी मिल नहीं रही है। बड़बड़ाते हुए वे आए रसोई घर में। पत्नी ने उन्हें देखा, कहा तुमने उस अलमारी में जो खूंटी है जहां पर दर्पण लगा हुआ है वो खूंटी ऊपर में उसमें तो टांग करके रखते हो, उसमें तुमने नहीं देखा क्या? क्या देखूं, देखने क्या है क्या उसमें? अरे उसमें कहीं टोपी थोड़ी ही टंगी है। बड़बड़ाते हुए गए देखने के लिए कि सचमुच उस खूंटी में तो मैंने देखा नहीं है, और जाकर के बहुत शर्मिंदा हुए क्योंकि टोपी उनके सिर पर ही थी और वे खोज रहे थे। अब पत्नी जोरों से हंसी, मिल गई टोपी, कोई जवाब नहीं दिया। हम लोगों का बुरा हाल, हंसते हंसते, अब टोपी दूर है या समीप है, आप इसका उत्तर दीजिए। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक बहुत दूर है, जब ज्ञान हो गया अत्यंत समीप है, सिर पर ही है, जहां होना चाहिए वहीं है। तो ठीक इसी प्रकार आत्म तत्व बहुत दूर है अज्ञानी के लिए, आत्म तत्व बहुत समीप है जिसने जान लिया उसके लिए। तो तद्दूरे तदुअंतिके तदंतरस्य सर्वस्य, सबके अंदर में और वही सबके बाहर में, वही इमनेंट वही ट्रांसेंडेंट, ऐसा यह तत्व है। तो सब ओर यह एक व्यापक तत्व, इस प्रकार से आत्मा का वर्णन यहां पर किया गया, विलक्षण रीति से वर्णन किया गया। तो प्रश्न किया जा सकता है कि फिर दिखता क्यों नहीं है? अगर ऐसा आत्म तत्व है जो हमारे भीतर ही अवस्थित है तो वह दिखता क्यों नहीं है? बाहर भी नहीं दिखता, भीतर नहीं दिखता, ठीक है एक बार बाहर दिखाई नहीं देता, बड़ा सूक्ष्म है, पर जब वह हमारे भीतर भी है तो वह दिखता क्यों नहीं है? श्री रामकृष्ण देव से प्रश्न पूछा और श्री रामकृष्ण देव का तो उत्तर चुटकुलों के माध्यम से कहते थे। अच्छा तुम लोग डाब तो खाते हो ना, पीते हो ना, डाब कहते हैं कच्चे नारियल को, हरे नारियल को, हाँ 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 पीते हैं, उसका पानी पीते हैं, खाते हैं। अच्छा तुमने देखा होगा डाब के भीतर में वह जो गूदा है, उस गूदे को तुम लोग निकाल सकते हो? तो कहा भक्तों ने, महाराज डाब से गूदा निकालना तो बड़ा कठिन है, क्योंकि जब डाब के रूप में है नारियल कच्चा है तो गूदा छिलके के साथ एक रूप हो गया रहता है। हम चाकू से इसे निकालने की चेष्टा करें तो कभी कभी छिलका भी कट करके निकल आता है, दोनों एक रूप हो गए हैं। क्यों? उसके भीतर में रस भरा हुआ है तो हम गूदे को निकाल नहीं पाते हैं, पर वही डाब सूख जाए, जो भीतर में रस है वह सूख जाए। श्री रामकृष्ण कहते हैं, अरे जब वही नारियल सूख जाता है तो थोड़ा सा उसे धक्का दे दो, अंदर में भेला अलग हो गया, गड़गड़ आवाज करता है, उसको छुरे से काटने की जरूरत नहीं होती है। इसी प्रकार आत्म तत्व भीतर तो है पर वासना का रस लबालब भरा हुआ है, इसीलिए आत्म तत्व की प्रतीति नहीं होती है। आत्म तत्व जैसे मानो शरीर और मन रूपी छिलके के साथ एक रूप होकर के स्थित है। मैं अभी आत्म तत्व के बारे में सोचता भी हूं तो या तो शरीर का स्मरण आता है, या फिर थोड़ा सा ऊपर उठूं साधना के क्षेत्र में तो मन का स्मरण आता है। तो शरीर और मन से परे आत्म तत्व की प्रतीति हो नहीं पा रही है, पर भीतर में है। कहते हैं जरा वासना रस को सुखा तो लो, उसे औंटा तो लो, ज्ञान और वैराग्य के द्वारा देखोगे वह आत्म तत्व इस शरीर और मन रूपी छिलके से अलग होकर के आवाज करेगा, मानो अपनी प्रतीति देगा। यह श्री रामकृष्ण का समझाने का तरीका, यह बिल्कुल सही तरीका। तो हमारे भीतर में वासना का रस लबालब भरा हुआ है, इसीलिए आत्म तत्व के होते हुए भी हमें आत्म तत्व की प्रतीति नहीं होती है। कभी हम साधना भी करते हैं तो शरीर का ध्यान आता है, और कुछ आगे बढ़ गए साधना के पथ में तो केवल विचारों का, मन का ध्यान आता है। तो हम मन की सीमा को पार नहीं कर पाते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि आत्म तत्व नहीं है, आत्म तत्व है परंतु उसकी प्रतीति नहीं हो पाती है। अब यहां पर कहा कि अच्छा ठीक है आपने यह बताया, तो शिष्य के मन का मानो प्रश्न, महाराज फिर यह जो आत्म तत्व की प्रतीति आप कहते हैं, आपने तो यह कहा, तो इस प्रतीति को अपने जीवन में कैसे प्राप्त किया जाए, उसकी साधना क्या है, आप उस साधना के संबंध में कुछ कहेंगे? कहते हैं हां, देखो साधना के संबंध में ये दो मंत्र हैं, छठा मंत्र और सातवां मंत्र। छठे मंत्र में क्या कहा, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते, यह छठा मंत्र है। इसका अर्थ क्या है, यस्तु यह जो व्यक्ति जो साधक, यस्तु सर्व तू माने परंतु, सर्वाणि भूतानि परंतु का मतलब कि कहा कि वह दूर भी है वह समीप भी है, तो सामान्य व्यक्ति के लिए यह विरोधाभास मालूम पड़ता है, परंतु जो साधक है उसको कैसा कैसा लगता है यह बता रहे हैं। इसके लिए तू शब्द यहां पर व्यवहार में ला दिया है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति, जो सभी भूतों को आत्मा में ही देखता है। अनुपश्यति, अनुपश्यति माने हरदम देखना, एक तो पश्यन एक देखना और अनुपश्यन हरदम देखना, माने हरदम देखने की चेष्टा करना, आत्मा के भीतर में जो सभी भूतों को देखने की चेष्टा करता है, सर्वभूतेषु चात्मानम, और फिर उसके बाद सभी भूतों में जो आत्मा को देखता है, ततो न विजुगुप्सते, ऐसा व्यक्ति फिर किसी कुंठा का शिकार नहीं होता। कुंठा का शिकार माने जैसे हम साधना करते हैं हमारे भीतर कुंठाएं आती हैं, कमजोरियां हैं, हमारे अपने भीतर में त्रुटियां हैं, तो हम कुंठाग्रस्त हो जाते हैं, हमें दूसरों के प्रति घृणा का बोध होता है। तो हमारे भीतर यह जो घृणा का बोध है, राग द्वेष का बोध है, यह किसके कारण है, कुंठाओं के कारण है। जो व्यक्ति कुंठाओं से मुक्त है उसके जीवन में घृणा का खेल नहीं चलता है, राग और द्वेष का खेल नहीं चलता है। परंतु जो व्यक्ति अपने जीवन में कुंठाओं को पाल करके चलता है, विजुगुप्सा होती है, तो कहते हैं देखो इस विजुगुप्सा के कारण साधना बढ़ नहीं पाती है। हम किसी से घृणा करते हैं, राग द्वेष करते हैं, तो फिर साधना कैसे हमारी आगे बढ़ेगी? तो साधना के क्षेत्र में तो वही आत्म तत्व जो सबके भीतर दिखाई देता है, यदि ऐसी प्रतीति न हो तो फिर हम कैसे आगे बढ़ने में समर्थ होंगे? इसके लिए कहा गया देखो ऐसी साधना करने से विजुगुप्सा का लोप होता है, विजुगुप्सा का नाश होता है, घृणा बोध का नाश होता है, राग द्वेष नष्ट होते हैं। किस बोध से, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति, जो सभी भूतों को आत्मा के भीतर सतत देखने की चेष्टा करता है और आत्मा को सब भूतों में देखने की चेष्टा करता है। यह विलक्षण है, साधना का परम सुंदर सूत्र है, बहुत ही बढ़िया सूत्र है। क्या मतलब कि आत्मा में सब भूतों को देखना, सब प्राणियों को देखना और सब प्राणियों में आत्मा को देखना। आपने कभी इस पर विचार किया? यही हमारे यहां नैवेद्य और प्रसाद का सिद्धांत है। हम जैसे नैवेद्य अर्पित करते हैं प्रभु को, तब हम क्या समझते हैं, जैसे हमने नैवेद्य लगाया तो हम यही कल्पना करते हैं कि प्रभु नैवेद्य ले रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, मानो हमने नैवेद्य को प्रभु के भीतर में देखा। और उसके पश्चात हम क्या देखते हैं, यह नैवेद्य अब प्रसाद बना दिया गया प्रभु के द्वारा, तो इस प्रसाद में हम प्रभु को देखते हैं। आप देखते हैं जब हम नैवेद्य देते हैं, पूजा का सिद्धांत यही तो है, जो कुछ हम प्रभु को अर्पित करते हैं यही हमारी कल्पना होती है कि प्रभु उसे स्वीकार रहे हैं। इसका मतलब जो कुछ मैं दे रहा हूं, नैवेद्य अर्पित कर रहा हूं, वह प्रभु के भीतर, और जब वह प्रसाद बन गया तो प्रभु अब इसके भीतर। इसीलिए तो प्रसाद हमारे लिए इतना महत्व रखता है, इसीलिए तो इतना पवित्र होता है। प्रसाद हम ग्रहण करते हैं तो छुला करके, आखिर वह पेड़ा ही तो है, अंतर क्या है? बाजार से मैं पेड़ा मंगाता हूं, यह भी पेड़ा है, पर आप देखेंगे अगर मैंने प्रसाद कहकर के दिया, उसका छोटा सा कण भी नीचे गिर गया जमीन पर, एकदम बड़ी श्रद्धा के साथ उसे उठाता हूं, माथे से लगाता हूं, उसे ग्रहण करता हूं। और पेड़ा इतना बड़ा टुकड़ा अगर गिर जाए जो प्रसाद ना हो, और बच्चा उसे उठाने जाए, हम कहे मुन्ना फेंक फेंक फेंक,
धूल है, छोड़ उसे, पर कितनी भी धूल में प्रसाद का कण गिर जाता है तो मुझे प्रभु ही वहां अवस्थित दिखाई देते हैं। यही तो प्रसाद का सिद्धांत है। जब मैं प्रसाद ग्रहण करता हूं तो उस प्रसाद में मुझे प्रभु की अवस्थिति का भान होता है, पेड़े का भान नहीं होता। कितने पेड़े मैं धूल में लोटते देख करके या फेंका जाया देख करके मेरी इच्छा नहीं होगी, पर यह प्रसाद का टुकड़ा है, मैं उठाता हूं, सिर माथे से लगाता हूं, ग्रहण करता हूं। तो यहां पर यही कहा गया कि जो इस संसार को प्रसाद के रूप में देखता है, पहले तो समर्पित किया प्रभु को और फिर उसके पश्चात प्रभु ने ही यह प्रसाद मुझे दिया है, इस ढंग से भाव लेकर के, यह पत्नी है प्रभु का प्रसाद, ये बच्चे हैं प्रभु के प्रसाद हैं, ये पति हैं प्रभु का प्रसाद है, यह भाव यदि मेरे जीवन में बना, देखने का तरीका मेरा बदल जाता है। यह मानो जीवन में हमारा जो प्रेम है पार्थिव प्रेम, या ऐसा पार्थिव प्रेम मानो भगवत प्रेम का संस्पर्श प्राप्त करके वह पवित्र हो जाता है, और यही पवित्र प्रेम मानो भगवान को प्राप्त करने में सहायक होता है। यह बात यहां पर कही गई। तो यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। जब हमारे लिए सब कुछ प्रसाद बन गया तब कहां विजुगुप्सा है? क्या प्रसाद के प्रति विजुगुप्सा होती है? मैं घृणा करता हूं, यदि वह धूल में प्रसाद का टुकड़ा गिर गया क्या मुझे घृणा होगी? पेड़ा गिर जाए तो घृणा होगी, मैं उसे ग्रहण नहीं करूंगा, वह तो धूल में गिरा है, पर इसे मैं उठाऊंगा, भले ही जूते पर प्रसाद गिर जाए पर उठाऊंगा, सिर माथे से लगा करके लूंगा प्रसाद में। यह पवित्र बोध है, ईश्वर की अवस्थिति का बोध है। तो यहां पर ऋषि कहते हैं, वत्स ऐसे ही तुम जो कुछ तुम्हारे पास है प्रभु को समर्पित करो और उसके पश्चात प्रभु के प्रसाद के रूप में ग्रहण करो, यही त्याग है। तेन त्यक्तेन भुंजी था माग्रिधा कस्य सिद्धनम, लालच क्यों करते हो? और फिर यह तो साधना की बात, और उसके पश्चात जब यही साधक सिद्ध हो जाता है तो क्या होता है? यस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। कहते हैं यस्मिन, यस्मिन माने जिस अवस्था में, सर्वाणि भूतानि ये सारे भूत आत्मैव अभूत आत्मा ही बन गए, ईश्वर स्वरूप ही हो गए। विजानतः किसके लिए हो गए? विजानतः जो ज्ञानी है विज्ञानी है, जो विजानतः शब्द यहां पर बड़ा महत्व का है, जो विज्ञानी है। यस्मिन सर्वाणि भूतानि जिस अवस्था में ये सारे के सारे भूत आत्मैव अभूत आत्मा ही बन गए, किसके लिए? विजानता विज्ञानी के लिए। तत्र को मोह, फिर मोह कहां? कह शोक है, उसके जीवन में शोक कहां? एकत्व अनुपश्यतः, क्योंकि फिर वह तो एकत्व का ही परिदर्शन करता है, उसके जीवन में शोक और मोह कहां? पर या विज्ञानी के लिए पहला जो मंत्र था साधक के लिए साधना की दृष्टि से, और दूसरे मंत्र में वह जो सिद्ध हो गया जो प्रभु को समर्पित करके प्रसाद के रूप में इस जीवन के भोगों को ग्रहण करता है, वह धीरे धीरे इसी साधना के फलस्वरूप परम सिद्धि को प्राप्त करता है, एकत्व की स्थिति को प्राप्त करता है, वह विज्ञानी है। विज्ञानी ज्ञानी और अज्ञानी, श्री रामकृष्ण कहा करते थे ये तीन स्थितियां हैं, एक है अज्ञानी, दूसरा है ज्ञानी और तीसरा है विज्ञानी। बड़ी सुंदर बात कहते थे, देखो अज्ञान क्या है, किसी ने दूध के संबंध में पढ़ा है या सुना है, यह है अज्ञान। पढ़ करके या सुन करके जानना अज्ञान। किसी ने दूध को देखा है, यह है ज्ञान। जिसने दूध को देखा मानो उपमा की दृष्टि से वह है ज्ञानी, और विज्ञानी कौन है? जिसने दूध को चखा है। जिसने दूध को चखा है वह फिर कभी भ्रम में नहीं पड़ता है, जिसने दूध के संबंध में सुना है या पढ़ा है वह भ्रम में पड़ सकता है, और कभी कभी वह तो विपरीत ज्ञान का कारण बनता है। श्री रामकृष्ण चुटकुला सुनाते हैं, कहते हैं कि देखो एक ने दूध के संबंध में केवल सुना था तो जानते हो वह अज्ञान हुआ ना, और भी कैसा हो गया वह, बिल्कुल विचित्र हो गया, उल्टा ज्ञान हो गया। क्या है महाराज? भक्तों ने पूछा, देखो एक जन्म से अंधा था, अब भीख मांगता था, कोई था नहीं, धीरे धीरे बड़ा हुआ। एक दिन रास्ते से जा रहा था, उसका एक आंखों वाला मित्र मिला, वह भी भिखारी। उसने कहा, क्यों सूरदास, आज सेठ के यहां आए नहीं, तुमको खबर नहीं मिली? वहां तो बढ़िया बढ़िया चीजें मिली भीख में। क्या क्या मिली? अंधे ने पूछा। उसने सारी चीजों की सूची बता दी, पर कहा कि आज खीर मिली लाजवाब, बढ़िया खीर। अंधे ने पूछा, यह खीर क्या चीज है? अरे तुमने कभी खीर नहीं खाई? नहीं भैया, अब आज तो पहली बार सुन रहा हूं। कहा, देखो कैसे समझाऊं, चावल, चावल तो जानते हो? हाँ जानता हूं। तो चावल और दूध मिलाकर के पकाते हैं। दूध? अंधे ने कहा, यह दूध क्या चीज है, तुम दूध भी नहीं जानते हो? अंधा बोला, मैं क्या जानू दूध कैसा होता है? अरे दूध सफेद सफेद और पानी के समान पतला। सफेद? अंधे ने पूछा, ये सफेद क्या भला है, तुम सफेद भी नहीं जानते? अरे आंखें नहीं, मैं क्या जानू सफेद क्या होता है। अब आंखों वाला सोचने लगा कि इसको कैसे समझाऊं सफेद क्या होता है। फिर एक ख्याल आया, उसने अपना हाथ यूं किया, देखो बगुले के समान सफेद, देखो बगुला। हां जरा टटोल करके देखो बगुला। धीरे धीरे उसने टटोला, कहा भैया यह तो बहुत टेढ़ा, ऐसी टेढ़ी खीर तुमने कैसे खाई होगी? यह जो है श्री राम कृष्ण कहते हैं, जो पढ़ करके और सुन करके ज्ञान है वह कभी उल्टे ज्ञान का कारण बन जाता है, तो यह उल्टा ज्ञान है। और ज्ञान जिसने दूध को देखा है, पर जिसने दूध को देखा है वह भी ठीक ठीक दूध की परख नहीं कर सकता। क्यों? वह भी गलती में पड़ सकता है। क्यों? जैसे तीन कटोरियां ले लें, एक कटोरी में खड़िए का घोल है, चूने का घोल है, दूसरी कटोरी में मठा है, छाछ है, और तीसरी कटोरी में दूध है। अब जिसने दूध को देखा है उसे कहा जाए कि तुम देख करके बताओ किस कटोरी में दूध है, नहीं देख सब बता पाएगा, क्योंकि तीनों कटोरियों में जो चीजें हैं एक समान दिखने में, वह जो चूने का घोल भी सफेद, वह जो छाछ है वह भी सफेद, दूध भी सफेद, वह बता नहीं पाएगा। पर जिसने दूध को चखा है, एक कटोरी उठाएगा चखेगा कहेगा यह दूध नहीं है, दूसरी कटोरी को उठाएगा चखेगा कहेगा यह दूध नहीं है, तीसरी कटोरी को उठाएगा चखेगा कहेगा यह दूध है। तो जिसने दूध को चखा है वह विज्ञानी है, वह कभी गफलत में नहीं रह सकता, उसका ज्ञान पुख्ता है पक्का है। तो यहां पर यही कहा, यस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः। जिसने उस आत्म तत्व को जान लिया, जिसके लिए ये सारे भूत आत्मा ही बन गए, फिर ऐसा जो विज्ञानी व्यक्ति है उसके जीवन में कहां से शोक कहां से मोह, ऐसा वह व्यक्ति हो जाता है। यह सिद्धि की अवस्था है, जहां पर मन इतना संतुलित बना रह सकता है। जैसे श्री रामकृष्ण दूसरा उदाहरण देते हैं ना, यह मन इतना संतुलित बना रह सकता है, उसका उदाहरण, नौका में एक जा रहे थे साधु महात्मा, वही नौका में और भी कई लोग बैठे थे, उसमें से कई लोग बड़े दुनियादार थे, जो ईश्वर निंदक थे साधु निंदक थे। वाह कहा वाह। अब उसका जो सिर था चिकना था, मुंडित केश, जा रहे थे, अब खिल्ली उड़ा रहे हैं ये कुछ लोग, तरह तरह से साधु को कह रहे हैं बातें सुनाते हुए। एक ने अपने हाथों से साधु के सिर पर तबला बजाते हुए कहा, यार ये बड़ा सुंदर तबला है, देखो कैसी आवाज निकलती है। उसने तबला बजाना शुरू किया। एक दूसरे ने कहा कि उससे ठीक ठीक आवाज नहीं निकलेगी। उसने अपना चप्पल निकाल लिया, उसने यूं किया। अब साधु तो मौज में है, कहा प्रभु ठीक है तेरी यह भी लीला देखने को मिल रही है, पर भगवान से भक्त का अपमान तो सहा नहीं गया। एकदम आकाशवाणी हुई, महात्मा भक्त कह मैं इन दुष्टों को सजा दे दूं, अभी सजा दे दूं, कह तो मैं इस नौका को उल्टा देता हूं, ये लोग मर जाएंगे, तुझे मैं बचा लूंगा। साधु ने कहा महाराज अगर आपको उल्टाने की ही मौज आई है, आपको तो मौज आती रहती है, इस समय उल्टाने की मौज आई है, तो नौका को क्यों उलटते हैं, इनकी खोपड़ी उलट दीजिए, जैसे ठीक हो जाएंगे, फिर ऐसा रहेगा नहीं। और वे लोग कितने भक्त बन गए, पैरों पर गिर पड़े साधु के, क्योंकि आकाशवाणी सबने सुनी, कांपने लगे थे जब से आकाशवाणी सुनी थी। तो यह भी एक तरीका है, देखने का तरीका। क मोह, कहते हैं कि तत्र को मोह कहो शोक, एकत्व अनुपश्यता, जहां एकत्व का दर्शन हो रहा है वहां पर शोक और मोह कहां पर है, यह कहा गया। और आठवें मंत्र में कहते हैं उसकी स्थिति कैसी होती है, जो ऐसा परम सिद्ध हो गया, विज्ञानी हो गया, वह आत्मा के समान ही हो जाता है। सपरिगा शुक्रम कायम अभ्रणम अस्नाविनम शुद्धम पाप विद्धम कविर मनीषी परिभूहु स्वयंभूहु याथा तथ्यतो व्यदधा शाश्वतीभ्य समाभ्य, यह यहां पर मंत्र दिया गया। और इस मंत्र का अर्थ है सह पर्यगात, सह माने वह, आत्म तत्व के लिए नपुंसक लिंग का व्यवहार हुआ है तद, पर यहां पर सह है तो इसका अर्थ यह करते हैं कि जो आत्मद्रष्टा पुरुष है वह मानो आत्मा के समान ही हो जाता है। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्म सम ही हो जाता है। तो सह कहने से जिसने आत्म तत्व को जान लिया वह कैसा होता है, सपर्यगात, जैसे आत्मा सर्वव्यापी, वैसे ही यह जो आत्मा का अनुभव करने वाला है वह भी सर्वव्यापी हो जाता है। श्री रामकृष्ण देव का जीवन देखें तो प्रत्येक शब्द का हमें वहां पर प्रमाण मिलता है, प्रत्येक शब्द का अर्थ उनके जीवन के माध्यम से ध्वनित होता है। ऐसा विलक्षण जीवन है श्री रामकृष्ण देव का कि वह पर्यगात, वह सर्वव्यापी हो गया। अब दिखाई तो देता है इस साढ़े तीन हाथ के शरीर में वह सर्वव्यापी कैसे हो गया, श्री रामकृष्ण की अनुभूति। एक दिन वे अपने कमरे से बाहर निकले, गंगा की तरफ अर्ध गोलाकार बरामदा, उसको कहते हैं वहां पश्चिमी बरामदा। आप में से जिन्होंने दक्षिणेश्वर में कलकत्ते में श्री रामकृष्ण देव का कमरा देखा है तो गंगा की तरफ दो दरवाजा खुलता है उनका, उधर चले जाइए, अर्ध गोलाकार बरामदा है। एक दिन भाव में खड़े थे, उनका मन व्यापक हो गया और वे क्या देखते हैं, हरी हरी दूब पर एक व्यक्ति बूट पहने हुए चला जा रहा है लॉन पर से, और उनको ऐसा लगा कि कोई उनकी छाती को ही रौंदे चला जा रहा है। उनकी छाती लाल हो गई, उनका भांजा हृदयराम उनकी सेवा में था, एकदम श्री राम कृष्ण कराह भी उठते हैं। आया हृदयराम, पूछा उसने, मामा क्या हुआ, श्री राम कृष्ण कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। बाद में हृदयराम की दृष्टि पड़ी, मामा की छाती लाल हो गई है, क्या हो गया। फिर बाद में श्री राम कृष्ण ने कहा, नहीं रे ऋदु, ये देख आज मेरा मन फिर से व्यापक हो गया रे, दूब के साथ एकत्व का भाव ऐसा हो गया, एक व्यक्ति बूट पहने उस पर से चलने लगा, मुझे लगा कि मेरी छाती को ही रौंदते चला गया। यह एक। और दूसरा जो है, एक दिन खड़े थे ऐसे ही, अचानक उनका मन वैसे ही व्यापक बन गया, दो माझियों में लड़ाई हुई, वो जो घाट है वहां पर नौकाएं लगती हैं, दो माझियों में लड़ाई हो गई, एक माझी ने दूसरे माझी की पीठ पर थप्पड़ से प्रहार किया, श्री राम कृष्ण एकदम जोरों से चिल्ला उठे, करा उठे जैसे थप्पड़ उन्हें ही लगा हो। हृदय राम दौड़ करके आया, पूछने लगा, मामा क्या हुआ, तुम कराह क्यों उठे, श्री राम कृष्ण तो भाव में कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। इधर उधर देखा हृदय राम ने, मामा की पीठ पर नजर पड़ी, वहां पर उंगलियों के निशान है, जैसे किसी ने तमाचा जल दिया हो, आग बबूला हो गया हृदय राम। कहने लगा, मामा उस दुष्ट का नाम तो बता दो, आज उसका सिर धड़ से अलग होकर के रहेगा। श्री राम कृष्ण जब धीरे धीरे प्रकृतिस्थ होते हैं तब कहते, नहीं रे ऋदु, किसी ने मुझे नहीं मारा रे, आज फिर से मेरा मन व्यापक बन गया, दो माझियों की लड़ाई होने लगी, एक ने दूसरे की पीठ पर तमाचा मारा, मुझे लगा कि तमाचा मुझे ही लगा है। अब यह तो अविश्वसनीय है, हमारी दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से, यदि स्वामी विवेकानंद नहीं होते प्रमाण स्वरूप, और यदि श्री राम कृष्ण ने यह नहीं कहा होता, उनका जीवन सत्य स्वरूप है, वे तो कहते थे कि सत्य ही कलिकाल की तपस्या है, उनका जीवन विलक्षण सत्य से भरपूर, कभी हम कल्पना नहीं कर सकते कि श्री राम कृष्ण ने कोई असत्य बात कही हो अपने नाम को उजागर करने के लिए। यह इसीलिए इस घटना पर विवश होकर के विश्वास करना पड़ता है। इसका मतलब क्या है? सपर्यगात। जो बातें समझ में नहीं आती शास्त्रों की, श्री रामकृष्ण के जीवन से समझ में आती हैं, वह पर्यगात आत्मा के समान ही वह भी व्यापक बन जाता है। यह अनुभूति सपर्यगात। शुक्रम अकायम अव्रणम, वह शुक्र है, शुद्ध है। अकायम अव्रणम स्नाविरम, मानो यहां पर कहा गया कि स्थूल शरीर से परे और लिंग शरीर सूक्ष्म, जिसे कहेंगे सूक्ष्म शरीर से परे, और शुद्धम माने कारण शरीर से परे, तीनों शरीर से परे वह ऊपर उठ जाता है। जो ऐसा आत्मदृष्टा मनीषी है वह कभी ही वह क्रांत दृष्टा हो जाता है। कवि का मतलब जिसने तीनों कालों को देख लिया, उसने अतीत को देखा, वर्तमान में स्थित है, और इसी मानो गणित के बल पर वह भविष्य को देख लेता है, उसे कवि कहते हैं। क्रांत दृष्टा, तीनों कालों का दृष्टा, तो वह कवि हो जाता है। मनीषी मन पर ईशन करने वाला, मन पर शासन करने वाला बन जाता है। परिभूहु स्वयंभूहु, वह मानो ट्रांसेंडेंट, सबसे परे, और उसी प्रकार स्वयंभू, वह स्वयंभू है, मानो किसी का उस पर जोर नहीं चलता है। सर्वतंत्र स्वतंत्र, श्री रामकृष्ण के जीवन के माध्यम से एक एक विशेषण का हम यहां पर सुंदर विश्लेषण कर सकते हैं, पर समयाभाव है इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। याथा तथ्य तो अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य, उसने शाश्वत वर्षों के लिए, शाश्वत काल के लिए अपने प्रयोजन को सिद्ध कर लिया। जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया उसने मानव जीवन का सारा प्रयोजन ही सिद्ध कर लिया। यह यहां पर कहा गया, वह क्रांत दृष्टा, तीनों कालों का दृष्टा हो जाता है। वह मन पर शासन करने वाला मनीषी हो जाता है। वह अपने मन को सबसे ऊपर उठा लेता है। वह स्वयंभू सर्वतंत्र स्वतंत्र हो जाता है। तीनों शरीरों से परे उसकी स्थिति हो जाती है। एक छोटा सा उदाहरण स्वामी तुरियानंद का, श्री रामकृष्ण देव के ये अंतरंग सन्यासी शिष्य स्वामी विवेकानंद ने इनको अमेरिका बुलाया वेदांत का प्रचार करने के लिए, और यह कहा था अमेरिका में भक्तों से, वहां के लोगों से, अभी तक तुम लोगों ने मेरे मुंह से वेदांत सुना है, अब तुम मेरे गुरु भाई तुरियानंद के जीवन के माध्यम से वेदांत को देखना। अभी तक तुमने वेदांत को सुना है, अब तुम लोग वेदांत को देखना, वेदांत को देखा जा सकता है। ऐसे तुरियानंद बनारस में थे, कार्बंकल हुआ, बहुत थोड़ा गहरा, काटना पड़ेगा, सर्जन ने कहा, और सर्जन ने कहा कि क्लोरोफॉर्म देना पड़ेगा। तुरियानंद जी बोले कि क्लोरोफॉर्म नहीं लूंगा, ऐसे ही ऑपरेशन करो, पर नहीं माने सर्जन। अंत में आश्रम के साधु लोग समझाने लगे, कभी तुरियानंद जी को समझाएं, कभी डॉक्टर को समझाएं। डॉक्टर ने कहा व्हाट्स नॉनसेंस, बिना क्लोरोफॉर्म को मैं ऑपरेशन कैसे करूंगा। अंत में तुरियानंद जी की ही बात रही, लिख करके दे दिया गया कि डॉक्टर पर कोई दायित्व नहीं है। अब कहा तुरियानंद जी ने 5 मिनट पहले ऑपरेशन के मुझे बता देना, बस 5 मिनट पहले बताया गया और ऑपरेशन 5 मिनट बाद शुरू किया गया। डॉक्टर ने देखा घाव कार्बंगल पीठ में इतना बड़ा, स्विच उभो करके कहीं कोई सिहरन नहीं, रिफ्लेक्स एक्शन कितना होता है, जैसे मैं बोल रहा हूं कहीं मच्छर ने काट खाया तो हाथ वहां जाकर के मारता है, कहीं कोई रिफ्लेक्स एक्शन नहीं, कहीं कोई सिहरन नहीं, और स्विच उभोई घाव में कहीं कोई सिहरन नहीं, और धीरे धीरे करके लगभग 2 घंटे का ऑपरेशन, और मानो जैसे हम कपड़े को अलग कर देते हैं अपने शरीर से, स्वामी तुरियानंद प्रदर्शित करते हैं अपने मन को अलग कर दिया शरीर से। यह देखी गई बात आज या आज के जमाने में 20वीं सदी में, डॉक्टर अत्यंत चकित, 500 रुपए उनकी फीस, कहा कि मैं यह फीस नहीं लूंगा, यह जो चमत्कार मैंने आंखों के सामने देखा, जीवन में ऐसा चमत्कार नहीं देखा था, तीनों शरीरों से ऊपर आत्मा में मन की स्थिति, और जब ऑपरेशन समाप्त हो गया फिर धीरे धीरे उनके कानों में ओंकार नाद प्रणव नाद सुनाया जाता है और स्वामी तुरियानंद धीरे धीरे शरीर में आते हैं। और तब पूछा कि कैसा लग रहा है, कहा हां थोड़ी पीड़ा हो रही है। इसका मतलब कि इच्छा करके, इच्छा अनुसार मन को शरीर से हटा लेना, ये होते हैं वे आत्मदृष्टा पुरुष। यह आज तक चर्चा रही, कल की जो चर्चा है अंत में जितने भी हैं 10 मंत्र हैं उनकी चर्चा करेंगे, भागते हुए करेंगे।
ठीक है, उसका अर्थ तो मालूम पड़ेगा, कर्म और ज्ञान का अद्भुत समाठ। यह कहते हुए आज अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको धन्यवाद।